نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير amazed by الأسماء الحسنى آج ہم اس سیریز میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام المنتقم دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے وقت ہمیشہ ہی پہلے سے ایک سوچ بن جاتی ہے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو عموماً اس سے مختلف ملتا ہے آج کا نام بھی کچھ اسی قسم کا ہے لفظ منتقم سوچتے ہی یا المنتقم کو پڑھتے ہی ذہن میں لفظ انتقام آتا ہے کہ کیسے انتقام کے لفظ کو ہم نے اردو میں دیکھا جب آپ انسانوں کے ساتھ لفظ انتقام دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب اس نام کو پڑھتے ہیں آپ کو پھر اس میں کیا ملتا ہے یہ ایک ایک چیز آپ کے میرے سوچنے اور سمجھنے کی ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہم انوالو کرتے ہیں جتنا اس نام کی گہرائی میں ڈوبتے ہیں اتنی ہمیں اللہ کی رحمت بھی اس میں سے ملتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ المنتقم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو کیا ہے اور پھر آپ کو اس چیز کا بھی یقین آ جائے گا کہ انسانوں کے لیے کسی کام کا یا کسی نام کا آنا وہ بالکل ایک مختلف معنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نام کے آنے سے پہلے تو آج آپ کو نیا ٹیمپلیٹ مبارک ہو اچھا لگا آپ کو یہ بھی اللہ کے نام کو سجانے کی کوششیں ہیں نا ہماری ہر چیز میں آج خوبصورتی ہے تو اللہ کے ناموں کو سیکھتے ہوئے اللہ کی بات کو سیکھتے ہوئے کیوں نہ ہو اور میں نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کے شوق بدل جاتے ہیں نا جیسے بچپن میں انسان کو کھلونے اچھے لگتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہوتے کبھی کچھ کبھی کچھ تو جب ہم اللہ کے طرف آتے ہیں نا تو ہماری ہر خوبی ہمارا ہر ٹیلنٹ اسی دین کے اندر چلا جاتا ہے اور ہم پھر اسی میں لوگوں کو سرو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کی بلندی کا ذریعہ بنیں ہمیں اپنی ذات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کی فکر ہو تو لفظ المنتقم پہ بات کرتے ہیں نون قاف میم اس کا روٹ ہے لغوی معنی اگر دیکھیں اس کا نقمہ سے بدلہ لینے والا لفظ انتقام جو ہے نا اصل میں باب افتعال میں چلا جاتا ہے ہے اصل میں وہی لفظ نقمہ سے ہی نقم اور آپ اس کو اردو کی بہت شستہ لینگویج میں اگر دیکھیں نا پرانی اردو میں تو آپ کو وہاں اس کے مختلف رنگ بھی دکھتے ہیں تو اصطلاحی معنی کیا ہے المنتقم جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے نافرمان بندوں کو ان کے ناپسندیدہ افعال پر سزا دے جی المنتقم وہ ذات ہے جو کسی سے انتقام لینا چاہے تو انتہائی سخت گرفت فرماتا ہے دعا کیجئے کہ اللہم لا تقتل نبی غضبک ولا تہلک نبی عذابک وعافنا قبل ذالک کس میں طاقت ہے کہ وہ المنتقم کے انتقاموں کو بھگت سکے اور کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا زندگی کا یہ ایک اصول بنائیے جتنا زیادہ آپ کا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ ہمیں اس چیز کا یقین آتا جائے گا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی انتقام کی تاب نہیں لا سکتے کیونکہ بندہ جب پکڑتا ہے تو بندے کی طرح پکڑتا ہے جب رب پکڑتا ہے تو رب کی طرح پکڑتا ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی بات شروع سے بتا دوں کہ بعض لوگ جب کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے پاتے نا کہتے اچھا اللہ اس کو پوچھے گا اور افسوس کے ساتھ کہوں کہ ایسا عموماً اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے اور خون کے رشتوں یا پھر وہ جن سے کبھی کوئی پیار محبت کا رشتہ جڑا ہوتا ہے پھر نہ بات بنی تو ہم دوسروں کو اس کے اندر ڈال کے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا دیکھنا تمہارے ساتھ یہ ہوگا اچھا پھر تمہیں اللہ پوچھے گویا کہ جب ہم خود حق نہیں لے سکتے تو پھر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں ایسا کبھی نہ کیجئے آپ خود ہی لے لیں اس سے تو بہتر ہے انتقام کیونکہ جب آپ کسی کو اللہ پہ ڈالتے ہیں تو پھر جب وہ رب بدلے لے گا نا تو وہی بات رکھے کہ نہ ربک لبل میر ساتھ وہ تو گھات لگائے ہوئے جہاں اس کی ہر خوبی اتنی ایکسٹریم کے اوپر ہے تو پھر آپ سوچیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی معاملات میں ہمیں اس میں لے گا انتقام پہ آئے گا تو پھر اس کا انتقام جیسا بھی تو کوئی نہیں نا آپ پڑھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ جیسی پکڑ کسی کی نہیں غالباً صورت فجر کی آیتیں ہیں مجھے لگتا ہے تو لہٰذا لفظ المنتقم کو پڑھتے وقت ہمیں اپنا ہر جرم یاد آ جائے ہر چیز جو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی ناراضگی کی نافرمانیوں کی ہم کہتے ہیں کہ مالک تو ہمیں معاف کر دے اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی شان انتقام کیا ہے دنیا میں عموماً انتقام کے لفظ کے ساتھ کیا آتا ہے خام خواہ کے جھگڑے خاندانی باتیں زمینوں کے جھگڑے किसी की शादी हुई, फिर ना निभी, फिर इसी तरह से कारोबार इकट्ठा किया, फिर ना बना। जब आप बंदों के मामले में इसको देखते हैं तो अमूमन लोग छोटी छोटी चीज़ों पे इंतकाम लेते हैं। इसके बरक्स जब आप अल्लाह सुबहाना ताला की इस सिफत को देखते हैं ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ऐसी किसी चीज़ की, कोई चीज़ को नहीं सामने रखता, बल्कि ये वसफ़ जब रब्बुल इज़्ज़त के हक में आता है तो ये सिफत हमीदा बन जाता है, तारीफ़ी चीज़ है। क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला का इंतकाम लेना एक अच्छी सिफत कैसे हो सकती है मजलूमों के हक में। जब लोग दूसरों को सताएं और वो बेचारे कुछ ना कर सकें और वो सब्र कर लें, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसु इल्ला मन जुलिम, तो जो जुलिम था, जिस शख्स पे जुल्म हुआ, जिस पे ज्यादती हुई, या वो बेवा औरत जिसका घर किसी ने ढा दिया, या वो किसी का एक ही बेटा था और किसी ने कत्ल कर दिया, या बिल्कुल नई नई शादी हुई और किसी ने उस लड़के को कत्ल किया, अब जिन लोगों के घर से ऐसे जनाजे उठते हैं वो क्या करेंगे? दुनिया की किसी अदालत में आप जाकर उनको चैलेंज भी कर दें, बदला भी दे लें, 10 लोगों के कातिल को एक दफ़े ही मारेंगे ना। पिछले सालों में किसी एक मर्द की तरफ था ना कि उसने 70-80 बच्चों को कत्ल किया, तो अब उसको 70-80 दफ़ा तो नहीं मारेंगे। और अगर सजा कोई अदालत दे भी दे कि इसको 100 बार मारो, तो बेकार बात है। एक दफ़ा में जो उसकी जान चली गई, उसके बाद तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ। तो दुनिया में हर चीज़ का बदला नहीं मिलता। दूसरी चीज़ देखिए कि नाफरमान बंदों के नापसंदीदा कामों पर सजा देता है, फरमाबरदारों के पसंदीदा कामों पे नहीं। इसके बरक्स दुनिया में देखिए अच्छे बुरे का तो फर्क ही मिट जाता है। यानी हमारे लिए जो चीज़ ऐब है, अल्लाह के लिए वो उसकी सिफत है, उसका वसफ है। जैसे ताज बादशाह के सर पे रखे तो ताज को भी अच्छा लगेगा, बादशाह को भी अच्छा लगेगा। और वही ताज अगर किसी भिखारी के सर पे रख दे तो दोनों पे ज्यादती होगी। तो लिहाजा अल मुंतकिम वो हस्ती जो उन लोगों का इंतकाम ले जो मजलूम हैं, और जब अल मुंतकिम इंतकाम लेने पे आ जाता है तो फिर वो कह लीजिए कि कोई चीज उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। दुनिया में अमूमन ऐसा होता है कि कोई किसी से बदला लेना भी चाहता है लेकिन ले नहीं पाता, पूरा नहीं ले पाता, पूरी कोशिश के बावजूद। किसी को मारना चाहा तो वो बच गया। इसी तरह से आप देखते हैं कि किसी के साथ कोई नारवा सलूक किया, कोई ऐसी बात की, नहीं होती पूरी, कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हस्ती कि जब वो इंतकाम लेने पे आ जाए तो फिर उसके वसफ, उसके काम, उसके साथ बंदे का मामला जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप अल मुंतकिम के बारे में सोचते भी हैं ना, तो दिल में साथ ही रख लीजिए इस बात को कि क्या मैंने अल्लाह सुबहान तआला के मामले में कोई हक तलफी तो नहीं की हुई। और एक सवाल हमारे जहनों में उठता है, क्या बंदों का इंतकाम लेना काबिल सताइश है? क्या हम किसी से इंतकाम ले सकते हैं? आप देखिए कि इस्लाम का एक बहुत बुनियादी असूल है कसास का। सूरत मायदा में भी आता है, सूरत बकरा में भी उसके इशारे मिलते हैं ना। और जो लोग नाम हमारे साथ चल रहे हैं सुबह के पारों में, तो कल छठा पारा है, उसमें भी इसकी कुछ बात है। अल्लाह ने कसास दिया, आज के इस पारे में हमने सुबह पढ़ा कि कैसे कत्ले अमद और कत्ले खता का फ़र्क है। अब ये सारी चीज़ें जब आप सामने रखते हैं तो आपको आ जाता है कि अल्लाह ताला के दीन में इंसाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर अगर कोई किसी पे ज्यादती करता है, कोई किसी का हक ले लेता है, तो क्या बंदा उससे इंतकाम ले सकता है? तो जवाब एक है, नंबर एक, कि इंतकाम अल्लाह की रजा जोई के लिए हो, इस सोच के साथ हो कि ये शख्स इस बदले को पाकर दूसरों के साथ ये मामला ना करे। फिर इसी तरह अल्लाह के लफ्ज़ को बीच में रखते हैं तो अल्लाह के दुश्मनों से हो, अपने जैसे मुसलमानों से थोड़ी होगा। और जुल्म के बराबर बदला लिया जाए, इल्ला मन जुलिम, कल पारे की पहली आयत में ही आप देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने मजलूम को इजाजत दी, लेकिन साथ ही बता दिया कि अगर ज्यादती की क्या होगा, और अगर किसी ने बददुआ कर दी तो उसने बदला ले लिया। अब वो अजर जो मिलना था, जो आखिरत में जाकर उससे फायदे उठाने थे, उसकी नेकी को, उसका खाना पानी आपको मिल जाना था, वो नहीं मिलेगा। तो इजाजत तो है, रुख्सत भी है, और कभी कभी तो ये फिर मस्ट हो जाता है। कोई एक शख्स किसी एक बच्ची के साथ ज्यादती करे, अब उस शख्स को आप छोड़ दें ताकि वो औरों के साथ भी ज्यादतियां करें, ये नहीं हो सकता। और वो कहते हैं ना कि ना जा उसके तहम्मुल पे, कि बेजा है उसकी डब, यानी बेजा है पकड़ उसकी। अल्लाह सुबहान तआला छोड़ने पे आए तो ऐसे लगता है कभी नहीं पकड़ेगा, और अल्लाह सुबहान तआला जब पकड़ने पे आता है तो पहली बात पे पकड़ लेता है। बिल्कुल बेलाक है उसका कानून, उसके आगे किसी की कोई मजाल नहीं कि वो बात कर सके। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर इंतकाम लेना है, अगर हमने अपने किसी जुर्म के ऊपर पकड़ना है ना, तो सबसे पहले इंसान खुद अपने नफ्स को पकड़े, क्योंकि इंसान का हकीकी दुश्मन इसका नफ्स है। सबसे ज्यादा काबिल मुआख़ज़ा यही है। जब नफ्स सरकशी करे, इसको सजा दीजिए, यानी बदला लीजिए, तो अपने नफ्स से लीजिए। नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ अमल करना ही असल में उसको सजा देना, शहवा, अपने आप को रोक के रखना। और याद रखिए कि किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही, किसी आलिम की बात है, वो कहते हैं कि फिरौन ने अना रब्बुकुम लाला कहा था। चलो, कुछ गुलाम थे, कुछ खुद्दाम थे, उसकी तो फौज थी, कुछ मिल मिला के उसका हक बनता होगा, लेकिन जब इंसान का नफ्स उसको कहता है ना रब्बुकुम लाला, तो ये तो उससे भी भद्दा लगता है। इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, आपके मेरे हाथ में, हमारे इख्तियार में क्या है। तो नहन नफ्स अनिल हवा। और याद रखिए, किसी का जिहाद शुरू ही नफ्स के जिहाद से होता है। अमूमन आप पढ़ते हैं ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह ज़िरवतुल इस्लाम, बिल्कुल ठीक है। सबसे आला जिहाद अल्लाह के नाम पे जिहाद करना, लेकिन सबसे अहम जिहाद आपने नफ्स से जिहाद करना। अहम और आला कैसे? फाउंडेशन क्या है? अहम है, लेकिन छुपी भी है, दबी भी है बुनियादें। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट फ्लोर क्या है? आला। आला ऊपर है लेकिन बुनियाद नीचे है। तो जब तक आप अपने आप से जिहाद नहीं करते, अपने नफ्स से जिहाद नहीं करते, वजाखित हम भी जिहादन कबीरा, सूरत फुरकान की गालिबन आयत 52 में आता है, इस कुरान के जरिए जिहाद करो, बड़ा जिहाद, तब तक बात नहीं बनती। फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि जब अल मुंतकिम के नाम को हम सलफ सालेहीन की कोटेशंस की रोशनी में देखें, तो क्या है? जो सरकश और नाफरमान की कमर तोड़ दे और सख्त अजाब करे, लेकिन मोहलत देने और डराने वगैरह के बाद, यानी पहले मोहलत देता, फिर डरावे देता, फिर कोई ना माने, फिर सख्त अजाब देता, और फिर तो कमर ही तोड़ देता, ताकि इनको सोचने का मौका मिले और शायद कि वो रुजू करें। लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू ना करे, तो फिर इसके लिए सख्त अजाब है। इमाम गजाली ने इसकी तारीफ की है, बात भी सच है। पहले अल्लाह खूब सोचने समझने का मौका देते हैं, किधर हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या करोगे आगे। फिर इसी तरह से आप देखिए, तो अल्लाह सुबहाना ताला के इस नाम को एक और रंग से देखिए कि अल मुंतकीम, वो हर एक को अजाब कुव्वते बर्दाश्त के मुताबिक देता है। यानी अजाब देना ऐसे ही नहीं है कैसी पकड़ ले, लोगों को उसके हिसाब से देता है, कौन किस जगह, कौन कितने पानी में है। और वो हर एक को उसकी कुव्वते बर्दाश्त के मुताबिक जब अजाब देता है ना, तो बंदे को उस वक्त पता चलती है बात की, फिर मेरे अंदर कितनी ताकत थी। अल्लाह ने इंसान के अंदर बहुत ताकत दी है, जाहिर नहीं पता चलता, लेकिन जब एडवर्सिटी आती है, जब कोई आपका साथ छोड़ दे, जब आपको कोई तनहा कर दे, ऐसी एनर्जी आपके अंदर आती है कि आप पहाड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, आप कहते पीछे हो जाओ। जिंदगी का असूल बनाइए, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है। कभी किसी इंसान के ऊपर नज़र ना लगाइए। फिर जब आप अल मुंतकीम को, मजलूमों को हक दिलाने वाला इस सेंस में समझते हैं, तो फिर आप इसका एक और रंग भी देखते हैं। लेकिन इस नाम की एक आध तारीफ़ें ज़रा सी और बता के इसके ऊपर थोड़ी सी बात करती हूँ। अल मुंतकिमु कौन है? वो ज़ात जो अपने नाफरमान बंदों को उनके नापसंदीदा अफ़ाल पर सजा दे। अल मुआक़िबु लिल उसाती अला मकरूहाती अफ़ालिहिम। और इसी तरह वो ज़ात जो किसी से इंतकाम लेना चाहे तो सख्त गिरफ्त फरमाए। हुवल्लज़ी युबालिगु फिल उकूबती लिमन शाह। अल्लाह ताला की ये शान है, उसका ये मुकाम है। तो इस नाम को जब आप देखते हैं कि अल्लाह ताला मजलूमों को कैसे हक दिलाता है, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने गवर्नर को खत लिखा। आप जानते ना कि अपने वक्त के बहुत बड़े खलीफा थे, और इन्होंने बहुत खूबसूरत हुकूमत की, शहजादे थे, खूब मोटे ताज़े, नेमतों में और मालो दौलत में पले हुए थे। लेकिन जब खिलाफत की जिम्मेदारियां मिली, तो कहते हैं कि जिस्म सूख के कांटा हो गया था, चुटकी काटो तो जिस्म पे सिर्फ स्किन थी। अल्लाह हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का इतना ही एहसास दिला दे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें भी सूख के कांटा कर दे, हमें बहुत कुछ करना ना पड़े इसके लिए। तो खत सुनिए इनका, कहते हैं कि हमदो सलाह के बाद तुम्हें बंदों पर जुल्म करने की कुदरत हासिल हो गई है, लेकिन जब भी किसी बंदे पर, यानी जब भी किसी शख्स पर जुल्म करने का इरादा करो, तो ये सोच लिया करो कि अल्लाह ताला को तुम पर कितनी कुदरत हासिल है, और याद रखो कि तुम आम लोगों पर जो आफत भी मुसल्लत करोगे, वो इनसे तो एक ना एक दिन टल जाएगी, लेकिन तुम्हारे आमाल नामे में हमेशा बाकी रहेगी। और याद रखो कि अल्लाह जालिमों का हक लेकर रहेगा। वस्सलाम। है ना इस खत को पढ़ने के बाद अंदर बाहर हरकत पैदा होने वाली कैफियत। और देखिए, ये होते थे वो लोग जिन्होंने हुकूमतें की, आज तो इख्तसाब कमेटियां बनाने वाले भी बिक जाए। आज तो न जाने क्या हो गया। और यकीन कीजिए कि अगर ये खौफे खुदा हो ना, जिम्मेदारियों को सामने रखे इंसान, तो कभी जिम्मेदारी ले ही ना, और ले तो उसको आसन दर्जे पे निभाए, तो आप कह सकते हैं कि अलमुंतकीम की शान इंतकामी बहुत बड़ी है, उसकी शान ही बड़ी अजीब है। अल्लाह ताला ने दुनिया को अमल की जगह और आखिरत को बदले की जगह बनाया, लेकिन आमाले बद की नहुसत इंसान को दुनिया में भी देखनी पड़ती है। हल मुंतकिम की पकड़ इंसान के वहमो गुमान से भी हटकर है। इंसान की हिफाजत के असबाब ही इसकी पकड़ के असबाब बन जाते हैं। जी, जो गार्ड होते हैं वो खुद ही शूट कर जाते हैं। कितना पैसा लगा के गाड़ी इंसान खरीदता है, और चंद दिन में वो गाड़ी हादसे का शिकार होती है और इंसान जमीन के अंदर चला जाता है, या फिर ऊपर रहते हुए चलने फिरने से महरूम हो जाता है। क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान तआला जब किसी को पकड़ने लगे तो फिर बहुत ही पकड़ता है, और ख़ास तौर पे जब अल मुंतकीम जालिम से दुनिया में ही इंतकाम ले लेता है, तो क्या कैफियत होती है। इस पे तो कह लीजिए कि जिंदगी खराब हो जाती है। दुनिया में ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाकयात इंतकाम खुदाबंदी के आपको कुरान पाक में भी मिलते हैं कि दिल लरज जाता है। मसलन देखिए, फिरौन पानी में गर्क हुआ, आज भी कोई एक पानी में डूबे तो क्या हाल हो। कहाँ फिरौन के लाओ लश्कर जब इतने बड़े डूब गए, तो उस दिन क्या हुआ होगा। अगर उस दिन का कोई अखबार, कोई न्यूज़ बुलेटिन होता तो सारी दुनिया में कोहराम मचा होता। फिर आप देखिए, कारून अपने दौर का दौलतमंद मिलियनेरियन पर्सन ज़मीन में धंसा दिया गया। आम हालात में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्लाह जब चाहे तो हो जाता है। फिर नमरूद को देखिए, कैसे मच्छर के काटने से मरा। अरे, एक मच्छर कहते हैं उसके नाक में घुस गया था, जिसकी वजह से अपने सर पे हथौड़े मरवाता था, और ये अजाब, ये तकलीफ कोई थोड़ा अरसा नहीं रही, सालों पे मुहित थी। लोगों से कहता, मेरे सर पे जूते मारो। बात भी सच है। इसी तरह किसरा एक बादशाह था ईरान का, उसको उसके बेटे शेरविया ने कत्ल किया। हलाको खान कहते हैं कि पागल होके मरा। इसी तरह हिटलर का अंजाम सबको मालूम है। इसी तरह आज के दौर की भी बहुत सारे लोगों को देखिए, जब अल्लाह इंतकाम लेने पे आता है तो क्या हालात हो जाते हैं। आप हर बस्ती को देखिए, हर शहर को देखिए, हर करिए को देखिए, हर दौर में जुल्म करने वालों के ऐसे वाकयात रूनमा होते रहे जो इबरत हासिल करने वालों के लिए काफ़ी होते हैं, और अंधे लोग इन्हें इत्तफाकात समझते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं ना, छोड़ो जो होगा देखी जाएगी, हम इसकी बात नहीं करते और उसकी नहीं करते। लेकिन हकीकत है कि जब अल्लाह सुबहान तआला इंतकाम लेने पे आता है ना, तो वो कंकर को बुलेट बना देता है, और अब्रहा का लश्कर परिंदों के कंकरों से तबाह करवा दिया। ये वाकया किसको नहीं पता, कैसा वो वक्त होगा। और आप देखें कि आज ज़रा सी कोई खबर आती है तो चारों तरफ फैल जाती है ना। उस वक्त तो मीडिया इतना फास्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये खबर, सच्ची खबर, अल्लाह सुबहाना तआला ने कुरान में महफूज कर दी। और उस वक्त जब ये सब हुआ था, तो अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त सरदार थे वहाँ के, उन्होंने काबे का कुंडा पकड़कर ये शेर पढ़े थे, जिसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह हर बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, कल इनकी सलीब गालिब ना आ जाए और ना ही इनकी कुव्वत तेरी कुव्वत को मात कर दे। अगर तूने इनको हमारा किबला ताराज करने दिया तो भी तेरी मर्जी। यानी दर्द में डूबे हुए अशआर थे कि अल्लाह आज हक को गालिब कर दे। अब जब आप ये सारा कुछ पढ़ते हैं तो दिल में क्या होता है, अपना छोटा लगता है ना। तो आप देखिए कि जब आपको अपना छोटा लगे ना, तो फौरन उस वक़्त छोटे बनने का सबूत दें। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर अपने आप को समेटेंगे, जितना अपने आप को दबा के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला आपको फिर काफ़ी होगा। फिर आप देखिए कि बाज़ जरायम का बदला दुनिया में ही मिलता है। वो कौन से जरायम है? हदीस में आता है कि कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिसके लिए आखिरत का अल्लाह ताला इंतज़ार नहीं करते। उसमें से एक चीज़ हक के खिलाफ एलानिया कोशिश करना, मसलन मुसहफ को फाड़ देना, नबी सल्लम के कार्टून बना देना, कुरान पाक को फ्लश में डाल देना, इस तरह अल्लाह के किसी ऐसे बंदे को जो हक बात करे उसको पीछे कर देना। वालदैन की नाफरमानी, उकूकुल वालिदैन कहते हैं इसको, यानी अल्लाह माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में इबरत बना देता है। अल्लाह ताला माफ़ कर दे कमी बेशियों को। फिर जालिम की इमदाद करके अल्लाह ताला दुनिया में जरायम का बदला ले लेते हैं, और आप देखेंगे कि अल्लाह को किसी से पूछना नहीं पड़ता। हम तो प्लानिंग करें, पता नहीं किस किस को अपनी बातें सुनाएं, फिर आगे लेके चलें। अल्लाह सुबहान ताला को ऐसी कोई परवाह नहीं है, बस वो काम करके अपना अपने काम से फारिग हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने आप को देखे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। फिर आप देखिए कि जब आप लफ्ज़ अल मुंतकीम के बारे में मज़ीद सोचते हैं तो आपको ये भी यकीन आ जाता है कि मैंने किसी से इंतकाम लेने की बजाय उसको नसीहत करनी है। आप देखिए कि इंतकाम लेके आप उस बंदे को ख़त्म करते हैं ना, लेकिन नसीहत करके आप उसके अंदर के शर को ख़त्म करते हैं जो उसने आपको तकलीफ़ दी होती है। अगर अल मुंतकीम लफ्ज़ या इस नाम को कुरान पाक में अगर हम देखें तो आपको सूरत आल इमरान की आयत नंबर 4 दिखेगी, मिन कब्ल हुदल लिन्नासि वनज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। और इसने वो कसवटी उतार दी जो हक और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह ताला के हुक्मों यानी उसके फरामीन को कबूल करने से इनकार कर दें, इनको यकीनन सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। पता क्या चला, तौरात और इंजील का तذکرہ करके कुरान को क्राइटीरियन बना दिया, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि लोग अल्लाह की बातों को, अल्लाह की आयात का इनकार ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ने अपने अजीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम करार दिया। ज़ाहिर कि अल्लाह के बेटे मुकर्रर किए जाए अल्लाह को तो ये कभी नहीं अच्छा लगेगा। कैसे लोग अल्लाह ताला के बेटे मुकर्रर करते हैं, हमारे तो कान पे जूं न रेंगे। हम कहते हैं सो के हाउ स्वीट, देखो कितनी मज़े की रस्में हैं। जब लोग बुतों पे चढ़ावे चढ़ाएं, रंग फेंके, आपस में खुश गपियाँ करें, तो एक सच्चा ईमान रखने वाला बंदा तो कभी भी नहीं इसके बारे में सोच सकता कि वो खुश हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला कैसे अपने इस नाम के नाते से हमें बताते हैं सूरत मायदा आयत 95 में, वमन आदा फयन तकीमुल्लाहु मिन वल्लाहु अजीजुन ज़ुन्तिकाम। लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत का इयादा किया यानी इसको दोहराया तो इससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह ताला सब पर गालिब है और बदला लेने की ताकत रखता है। और सूरत अल अराफ 136 में आता है, फन तकम ना मिन हो फ़रक ना हम फिल यम बी अन्न हम कज़्ज़बू बी आयातिना वकानू अनहा गाफिलीन। फिर हमने इनसे बदला लिया, फिर हमने इन्हें दरिया में डबो दिया इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो इनसे गाफिल थे। फिर इसी तरह से सूरत इब्राहिम 47 में आता है, वला तखसबन अल्लाह मुखलिफ वादिही रसूलहु इन अल्लाह अजीजुन ज़ुन्तिकाम। बस अल्लाह को अपने रसूलों से वादा खिलाफी करने वाला ख्याल न करें, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त बदला लेने वाला है। कभी हमने सोचा भी नहीं कि कुरान पाक में इतनी जगह बदलों का जिक्र है। और याद रखिए, जब अल्लाह बंदे के बदले लेने चाहे चीखें निकल जाती हैं, कहा करे अल्लाह तू मुझे ना अपने बस डाल ना किसी बंदे के डाल, बस तू मुझसे माफी का मामला कर दे। हर रात सूरह सजदा में आप पढ़ के सोते हैं आयत 22, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही थुम्मा अरदा अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। और इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसे इसके रब की आयतों से समझाया जाए फिर वो इनसे मुंह मोड़े, हमें तो गुनाहगारों से ना है। देखिए अल्लाह इंतकाम की बात जो भी करते हैं ना तो साथ किसकी बात करते हैं, मुंतकिमून, किन से, मुजरिमों से। तो अल्लाह सुबहाना ताला का बदला लेना नेक और अच्छे लोगों से नहीं है, क्रिमिनल से है। और दुनिया में क्रिमिनल से गवर्नमेंट भी बदले लेती है, उनको जेल में डालती है और इसी तरह उनके साथ मुख्तलिफ मामलात किए जाते हैं। اور سورة دخان آیت 16، یوم نبتش البطشت الکبرا انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. جب اللہ کہتے ہیں بطشت الکبرا تو آپ سوچئے البطشت الکبرا کیا ہوگی وہ. اور اسی طرح کی آیات اور بھی ہیں. اب اگر ہم آخر میں احادیث میں سے کچھ دیکھ لیں تو سب سے پہلی حدیث سلسلہ صحیحہ کی روایت نمبر 80 ہے، ابو ذر غفاری راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں صادق المصدوق یعنی سچوں میں سے سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کا بدلہ 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، اور برائی کا بدلہ 1 گنا دوں گا یا اس سے بھی معاف کر دوں گا. اے میرے بندے، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر مجھے ملے تو میں تجھے اتنی ہی بخشش عطا کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. اللہم اجعلنا منہم. اللہ شرک خفی اور جلی سب سے ہمیں پاک کر دے. اور اگلی روایت ابو داؤد کی روایت، سنن ابی داؤد 4785، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں جب بھی اختیار کا حکم دیا گیا، چوائس، تو آپ نے اس میں آسان تر کو منتخب کیا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا. اس صورت کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہو تو آپ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بدلہ لیتے. تو ہم بھی اپنے لیے عمل کی بات لکھیں. جان کے مشکلوں میں نہیں پڑنا چاہیے، یعنی گرمی کی دوپہر اور دھوپ بھی آدھے حصے پہ سڑک کے اور آدھے پہ چھاؤں ہیں تو آپ زبردستی دھوپ میں چلیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے لیے انتقام نہ لیجیے، اللہ کے دین کو بنیاد بنائیے ہر معاملے کی. پھر سلسلہ صحیحہ کی روایت 2837، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق پر تان کیا، یعنی ذرا سا تانہ دیا اور ان کو تکلیف دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اس نے دوسری دفعہ تکلیف دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر خاموش رہے. جب وہ باز نہ آیا اور تیسری دفعہ اذیت پہنچائی تو ابو بکر صدیق نے بھی انتقام لیا. آپ کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا آپ نے میری بات محسوس کی ہے؟ آپ نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا جو اس کو جھٹلاتا رہا، جب تو نے انتقام لیا تو شیطان گھس آیا. اب میں ایسی مجلس میں تو نہیں بیٹھ سکتا جس میں شیطان دخل اندازی کر رہا ہو. اصل میں ابو بکر کو مقام صدیقیت بتایا جا رہا ہے. بعض دفعہ اجازت بھی ہوتی ہے، رخصت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ درجے پانے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. پھر آگے بھی روایت سلسلہ صحیحہ کی 260، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف والی بات سن کر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ ہے. لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی کو اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، لیکن وہ فوراً انتقام لینے کی بجائے حفاظت کرتا ہے، انہیں رزق عطا کرتا ہے اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے. ہمیں بھی اپنا ضرب بڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو ذرا سی بات پہ اتنا ناراض ہوں ہم کہ چھوڑو میں تمہیں نہیں معاف کروں گی، تو پھر اللہ نہ معاف کرے تو کیا بنے گا؟ ہمیشہ اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھا کریں. پھر صحیح مسلم کی روایت 7089، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے لیے بھی ظلم نہ کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی کبھی کبھی ایمان والوں پہ تکلیفیں زیادہ آ جاتی ہیں، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت ہوگی تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی جس کا وہ بدلہ دیا جائے. بالکل اپوزٹ معاملہ ہے دونوں کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ثواب کی نیت سے صبر کرنے والوں کے درجات اور اجر بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت 6424، صبر کا بدلہ دینے والا کون؟ المنتقم. جی کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला मेरे हाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह हमें सदमों से भी बचाए और जन्नत भी अता फरमाए। और अगर आप कहें कि जहन्नम असल में अल मुंतकिम का असल इंतकाम है कि वहाँ उन लोगों को डालेगा जो दुनिया में खुले फिरते रहे। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है 2561, अबू हुरैरा रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और जहन्नम के दरमियान बहस और तकरार हुई। जन्नत ने कहा, मेरे अंदर कमज़ोर और मिस्कीन दाखिल होंगे। जहन्नम ने कहा, मेरे अंदर जालिम और मुतकब्बिर दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने फैसला करते हुए जहन्नम से कहा, तू मेरा अजाब है और मैं तेरे जरिए जिससे चाहूंगा इंतकाम लूंगा। और जन्नत से कहा, तू मेरी रहमत है, मैं तेरे जरिए जिस पर चाहूंगा रहम करूंगा। खानला, अब आपके ये कैसे हुआ? तो यूं मिनून बिल गैब, पहले ही दिन के सबक को याद रखिए। तो सवाल ये कि क्या इस नाम के साथ कुछ दुआएं और अजकार हैं? तो बिल्कुल हैं। हम अल्लाह की पकड़ से कैसे बचने की दुआएं करते हैं? मुस्नद अहमद की रिवायत 1295, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरिदाक मिन सखतिक व आऊज़ु बिमुआफातिक मिन उकूबतिक व आऊज़ु बिका मिन कला उख्सी सनान अलैक अंत कमा अस्नै ताला नफ्सिक। ए अल्लाह, मैं तेरी रजामंदी की पनाह में आता हूँ, तेरे गुस्से से, तेरी माफ़ी की पनाह तलब करता हूँ, तेरी सजा से, तेरी पनाह चाहता हूँ तुझसे। मैं तेरी सना का इहाता नहीं कर सकता, तू तो वैसे ही है जैसे तूने अपने नफ्स की खुद सना बयान की। इस दुआ को पढ़ा करें। फिर इस तरह सुनन तिरमिजी की रिवायत 3528, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन गदबिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमजाति शयातीनि मा यहदुरून। मैं अल्लाह के तमाम कलेमात यानी अस्मा सिफात की पनाह में आता हूँ, उसके गज़ब और गुस्से से, इसके अजाब से और इसके बंदों के शर से और शयातीन के वसवसों से। और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि वो शैतान मेरे पास भी आए। सुबह शाम की दुआओं में भी इस तरह की खूबसूरत दुआएं मौजूद हैं। अल्लाह ताला मैं अपनी पकड़ से बचाए। तो फिर अल मुंतकिम नाम जानकर अल मौइज़तिल हसना क्या है? पहली बात है कि दूसरों से बदला लेने की बजाय माफ़ करने की सिफत पैदा करें, खुद जुल्म करने से बचें और दूसरों को जुल्म से बचाएं। गुनाहों की पकड़ पर हर वक्त फिक्रमंद रहिए और अगर गुनाहों की पकड़ हो इससे बचने के लिए आफ़ियत की दुआएं मांगें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्फ़ वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरा। और इस तरह अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व आफ़िनी फ़ी समी। और इसी तरह से और फिर से, जब किसी से गुनाह सरज़द हो जाए तो बदगुमान ना हो बल्कि इसके असबाब पर गौर करें। असल में हम दूसरों के हालात नहीं जानते ना, तो हम उसके बारे में कुछ से कुछ सोच लेते हैं। फिर इंतकाम का जज्बा पैदा हो तो इसके इंजाम और नताइज के बारे में सोचें। दिल को बुग़्ज़ और अदावत की आलूदगियों से पाक करें और माफ़ कर दें। और साथ ही कहिए कि ए अल मुंतकीम, तू मुझे मेरे गुनाहों पे माफ़ कर दे। ए मालिक, तू मुझे ना पकड़ना। तो जो बात हमने की है उसका खुलासा क्या है? कि अल्लाह ताला नाफरमानों को मौका देता है और बाद में फिर उनको पकड़ लेता है। जब कोई बंदा अपने आप को अल्लाह से बड़ा समझे या अल्लाह के हुक्म को ना माने तो फिर अल्लाह ताला को पूरा हक है। आप देखिए, इतनी बड़ी कायनात बनाकर, इतना हुसन बखेर कर उसने आपको मुझे बता दिया कि मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया में भेजी और उनको नाकाम व नामुराद कर दिया। और ऐसे बहुत सारे आपको वाकयात मिलते जाएंगे इंसानी ज़िंदगी में, हालात और वाकयात में, कि कैसे अल मुंतकिम जालिम से दुनिया ही में इंतकाम ले लेता। और अच्छा है दुनिया में ले ले, अगर तो माफ़ कर दे तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आखिरत में लेगा ना तो वो बहुत मुश्किल होगी। दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, ये सिर्फ इत्तफाक नहीं है, ये हकीकत है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। और ऐसे वाक़यात में से एक वाक़या किसी ने शेयर किया कि एक बहुत नेक शख्स थे, मुत्तकी और परहेजगार। उन्होंने और उनके दोस्त ने मिलकर एक कोठी अलॉट की। वो दोस्त नीचे रहा और मौलवी साहब को ऊपर का हिस्सा दिया। कुछ दिन के बाद इस दोस्त का इंतकाल हो गया तो उसका जो बेटा शराबिक था, इस बात पे आ गया कि मौलवी साहब को उनके हिस्से से निकाल दें। खैर ज़बरदस्त इनका सामान फेंक दिया और ऊपर के हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने मुकदमा दायर किया और अपील की, हर जगह से हार गए क्योंकि रिश्वत और शराब तो पहुंच ही रही थी उनको। फिर उसने दो खतरनाक से कुत्ते उन रास्तों पे बांध दिए जहां से ऊपर चढ़ के जाते थे, यानी खूब तंग किया। तो वो नेक शख्स थे, बेटे भी इनके शरीफ थे, झेलते रहे। अचानक उसका जवान भाई अपने ट्रक के उलट जाने से दबकर मर गया। और इस तरीके से जिसने एक शख्स को सताया, उसके अपने ही घर वालों ने फिर उनको, इमाम साहब को, वापस उनकी जगह पर रखी और कहा कि आपका सब्र इस बच्चे को ले गया। और इस तरह की और बातें आप दुनिया में सुनते हैं। फिर सर हमने सुना कि कैसे वालदैन की नाकदरी की, नाफरमानी की सजा दुनिया में मिल जाती है। फिर इस तरह के वाक़यात भी आपको बहुत से मिलेंगे। नॉर्वे में एक केस सामने आया कि एक बहुत शहर के मशहूर वकील, यानी जिनके जाने पे खबर आ गई, यही बहुत बड़ी बात है, तो उनके बेटे ने उनको कत्ल कर दिया। अब बताइए, सारी ज़िंदगी की वकालत और दूसरों को मुकदमे जिताने वाला इस बेटे का मुकदमा कैसे जीतेगा? तो इसलिए कभी भी अपने आप को केयर फ्री ना कीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला अपनी कुदरत के करिश्मे हमें हर साल दिखाते हैं। एक आपने वो भी वाक्य सुना होगा कि एक सर्जन का बेटा एक हादसे में जख्मी हुआ, एक्सीडेंट हुआ और सर फट गया। लोग हॉस्पिटल में ले आए, जब इन्हीं को ऑपरेशन के लिए बुलाया और वहां जाकर देखा अपना ही बेटा, तो चीख मारी और खुद अपना भी दिमागी तवाजुन खो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तआला ने सूरत फजर में क्या फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बु कबियात इरम ज़ात इमात अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद। तो उसमें भी आप देखिए कि इंतकाम की बात है ना, फिरौन की बात, उसके घरों की बात, उसके महल्लात की बात। और अगर अल मुंतकिम ना होता ना, तो दुनिया बिल्कुल बेलगाम हो जाती। इंतकाम में यही हिकमत है कि लोगों को ज़रा अपना अंजाम दिखता रहे। कहते हैं ना कि हमने देखे हैं ज़माने में बहुत से इनकलाब, अहले दौलत से कहो इतना न इतराया करें, न जाए इसके तहम्मुल पर कि बेढब है गिरफ्त इसकी, डर इसकी देर गिरी से कि है सख्त इंतकाम इसका। और अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। दुनिया में किसी पे जुल्म ना करें, किसी पे ज्यादती ना करें, कोई मासी है, कोई ड्राइवर है, क्योंकि अमूमन गरीबों पे किया जाता है। हुकूमतों पे भी लोग ज्यादती करते हैं, अमीरों पे भी करते हैं, मोहसिनों के ऊपर करते हैं। वो कहते हैं ना कि पीठ में कूड़ा घोंपते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। बस इस नाम को अपने जहन में रखिए और जब नफरमानी पे दिल करे, जब गुनाह की तरफ तवज्जो जाए, तो इस बात को याद कर लीजिएगा। इमाम इब्ने कसीर ने एक वाक्या भी अपनी तफसीर में बयान किया है कि दमश्क में एक शख्स अपना गधा उजरत पर देकर गुजर बसर करता था। तो एक दिन एक शख्स ने आकर कहा कि फलां जगह पर जाना है, मुझे ले चलो। उसने कहा ठीक है, बैठो। एक वीरान रस्ते से गुजरने लगा तो गधे के मालिक ने कहा कि ये रास्ता मुझे नहीं मालूम। वो शख्स कहने के, मुझे मालूम है, ये करीब पड़ता है। खैर जब आगे बढ़े तो खतरनाक वादी आ गई। वो शख्स गधे से उतरा, खंजर निकाल कर सवारी के मालिक को इसने कत्ल करने का इरादा किया। तो उसने अल्लाह का वास्ता दिया, जो कुछ है गधा उसके ऊपर सामान ले लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं माना, कहा वो तो लेना ही है मगर तुमको भी कत्ल करूंगा। तो उसने फिर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी। वो जो शख्स था कहेंगे जल्दी पढ़ो, तो मालिक कहता है कि मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खौफ की वजह से जो कुछ था सब भूल गया, कुरान का एक लफ्ज़ मेरे हाफ़िज़े में नहीं आया और अचानक मेरी ज़ुबान पर आयत सूरत नमल है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यकशिफुस्सू, कौन है जो परेशान हाल की दुआओं को सुनता है और इनकी तकलीफ़ को दूर करता है। कहते मैंने ये दुआ मांगनी शुरू कर दी, इतने में एक शख्स सवार आया और उसके हाथ में नेज़ा था। उसने उस डाकू के सीने में मारा और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा मैं उसी ज़ात का बंदा हूँ जो परेशान हाल की दुआ सुनता और मुसीबत को दूर करता। अब आप देखिए कि आपके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे मामलात आते हैं। तो कहते हैं ना, क्या जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। अल्लाह ताला मजलूमों को हक दिलवाएगा, दुनिया में दिलवा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला आसान करे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।